एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने समकालीन ब्रिटिश साहित्य में सचमुच हलचल मचा दी।
हाँ बिल्कुल,
बर्नार्डिन एवरेस्टो का 2019 का बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास गर्ल वुमन अदर।
जी,
एवरेस्टो वो सिर्फ एक लेखिका नहीं है बल्कि उन्हें एक साहित्यिक आविष्कारक कहना ज्यादा सही होगा, है ना?
सही कहा। नाइजीरियाई पिता और अंग्रेज माँ की संतान है और उनकी ये जो मिश्रित विरासत है वो उनके लेखन में मतलब बहुत गहराई से उतरती है।
और ये बात भी तो खास है कि वो मार्गरेट एटवुड के साथ संयुक्त रूप से बुकर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, एक मील का पत्थर।
तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेस्टो ने कैसे 12 अलग अलग अश्वेत ब्रिटिश महिलाओं की आवाजों को एक ऐसी लय में पिरोया है जो सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं रहती बल्कि आधुनिक ब्रिटेन में अश्वेत होने के पूरे अनुभव की एक तरह से कहें तो धड़कन बन जाती है।
क्या बात है।
और ये धड़कन, ये आपको किताब के पहले पन्ने से ही महसूस होने लगती है।
हाँ।
देखिए, ये उपन्यास कोई सीधी रेखा में चलने वाली कहानी नहीं है।
हाँ वो तो है।
ये तो जैसे एक एलिडोस्कोप होता है ना, वैसा है। 12 मुख्य किरदार हैं।
हाँ।
सबकी जिंदगियां पहली नजर में अलग अलग दिखती हैं, बट जैसे जैसे आप इसे पढ़ते हैं, घुमाते हैं, तो उनके बीच के वो अनजाने अनदेखे से रिश्ते उभरने लगते हैं।
अच्छा।
कहानी का सेटिंग तो मुख्य रूप से आज का लंदन और ब्रिटेन है।
हाँ।
लेकिन किरदारों की यादों के जरिए, फ्लैशबैक के जरिए,
हाँ,
हम कई दशक पीछे भी जाते हैं।
हाँ, और उससे उनके आज को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल, एक जमीन मिलती है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है।
और यही तो इसकी खासियत है। एवरेस्टो ने पारंपरिक अध्यायों का इस्तेमाल नहीं किया, वो किरदारों के इर्द गिर्द कहानी बुनती हैं। और ये संरचना, ये सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं है,
नहीं नहीं,
ये अपने आप में एक संदेश भी है कि पहचान कोई एक ठोस चीज नहीं है बल्कि कई टुकड़ों से मिलकर बनी है, जो बिखरे हुए भी लगते हैं और जुड़े हुए भी।
हाँ बिल्कुल सही कहा। और इसे वो अपनी खास शैली, जिसे वो खुद फ्यूजन फिक्शन कहती हैं, उसमें ढालती हैं।
फ्यूजन फिक्शन, ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे?
हाँ, मतलब इसमें गद्दे की जो कहानी कहने की ताकत है वो तो है ही
जी,
लेकिन साथ में कविता की लय, उसका प्रवाह, वो भावनात्मक गहराई, वो सब मिल जाता है। भाषा में एक संगीत सा आ जाता है।
अच्छा, तो पढ़ने में कैसा लगता है ये?
पढ़ने में ये ऐसा लगता है जैसे आप किरदारों के विचारों की नदी में बहरे हों, एकदम सीधा उनके एहसास तक पहुंच जाते हैं आप।
वाह।
और इसी शैली के जरिए एवरेस्टो इंटरसेक्शनैलिटी जैसे जटिल विचार को मतलब सिर्फ अकेडमिक तौर पर बताती नहीं बल्कि महसूस करा देती हैं।
हाँ, इंटरसेक्शनैलिटी, ये शब्द सुनने में भारी लगता है पर किताब इसे असल जिंदगी से जोड़ देती है। मतलब कैसे किसी की पहचान सिर्फ उसके रंग या लिंग से तय नहीं होती।
बिल्कुल।
बल्कि उसकी क्लास, उसकी उम्र, उसकी यौनिकता, शिक्षा, वो कहाँ से आई है, ये सब चीजें मिलकर उसके अनुभव को एकदम अनूठा, एकदम खास बना देती हैं।
हाँ, और ये उपन्यास इसी धारणा को तोड़ता है कि सारी अश्वेत महिलाएं एक जैसी होती हैं। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर आवाज अलग है, हर संघर्ष अनोखा।
अच्छा, तो कुछ मुख्य किरदारों की बात करें जिनसे ये विविधता साफ नजर आए।
हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अम्मा को लेते हैं। 50 के पार एक सफल नाटककार हैं। उनका एक नाटक है द लास्ट अमेज़न ऑफ दाहोमी, जो उपन्यास के केंद्र में है।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कई किरदारों की कहानियां इसी नाटक के इर्द गिर्द आकर मिलती हैं, है ना?
बहुत कड़ा संघर्ष किया।
और फिर उनकी बेटी
याज।
हाँ, हाँ।
19 साल की। वो उस पीढ़ी की नुमाइंदगी करती है जिसके पास शायद अम्मा से ज्यादा अवसर है।
हाँ।
लेकिन वो अपनी माँ की पीढ़ी के नारीवाद और उनके संघर्षों पर सवाल भी उठाती है।
अच्छा,
ये पीढ़ीगत तनाव दिलचस्प होगा।
बहुत दिलचस्प है।
फिर एक बिल्कुल अलग दुनिया में हम जाते हैं कैरल की कहानी के साथ। वो एक सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मध्यम वर्गीय अश्वेत महिला।
हाँ।
तो उसकी कहानी क्या दिखाती है?
उसकी कहानी दिखाती है कि कॉर्पोरेट जगत की उस चमकदार दुनिया में भी रंग और नस्ल का बोझ कितना कितना भारी हो सकता है।
वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना।
हाँ हाँ।
कि अपनी सफलता पर यकीन ना होना।
बिल्कुल।
कि आप इसके लायक नहीं है, कहीं आपकी असलियत पकड़ी ना जाए।
कैरल उसे जीतती है रोज। और कैरल के अनुभव को शायद और गहराई मिलती होगी जब हम उसकी माँ बम्मी की कहानी पढ़ते हैं।
बिल्कुल। बम्मी नाइजीरिया से आई पहली पीढ़ी की आप प्रवासी हैं। उनकी कहानी उन बलिदानों की है, उन अधूरे सपनों की है और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की उस अथक कोशिश की है जिसने कैरल की सफलता की नींव रखी। आप देखते हैं कि माँ और बेटी की दुनिया कितनी अलग है, उनकी भाषा, उनकी सोच।
हाँ, वो फर्क ही तो इंटरसेक्शनैलिटी का जीता जागता सबूत है। एक ही परिवार में क्लास और पीढ़ी कैसे अनुभव बदल देते हैं।
एकदम सही कहा। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमें मिलती है लैटिशा, श्रमिक वर्ग के अकेली माँ, कहीं कहीं नौकरियां करके गुजारा कर रही है।
उसकी कहानी
नस्लीय, वर्गीय और लैंगिक उत्पीड़न के वो जो एक साथ मिलकर असर डालते हैं ना, उसको सामने लाती है और ये भी दिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कितनी ताकत और जुगाड़ चाहिए होता है।
वाकई, इनके अलावा और भी किरदार हैं।
हाँ, कई हैं। शर्ली है एक टीचर, डोमिनिक अम्मा की पूर्व प्रेमिका और लेखिका, पिनेलोपी जिसकी कहानी में एक बड़ा राज खुलता है, विंसम है, हैटी, ग्रेस और एक युवा नॉन बाइनरी किरदार मेगन मॉर्गन भी है।
अच्छा,
जो आज की पीढ़ी की पहचान से जुड़ी नई तलाशों को सामने लाती है। ये सब मिलकर अश्वेत ब्रिटिश अनुभव का एक बहुरंगी, मल्टी कलर्ड चित्र बनाते हैं, कोई एक रंग का नहीं।
तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है, मतलब इन सब किरदारों को जानने के बाद पाठक कैसे इन अलग अलग धागों को जुड़ता हुआ दिखता है।
कहानी की बुनावट बहुत ही ऑर्गेनिक है। ये एक किरदार से दूसरे पर छलांग लगाती है, लेकिन उनके रिश्तों को धीरे धीरे खोलती जाती है। हम अम्मा के नाटक की तैयारी से शुरू करते हैं, फिर डोमिनिक के जरिए साहित्यिक दुनिया में झांकते हैं, कैरोल हमें कॉरपोरेट जगत की झलक दिखाती है
जी।
बम्मी और लैटिशा हमें आप्रवासी और श्रमिक वर्ग की जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। फिर कहानी और फैलती है, शर्ली हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर ले जाती है, विंसम स्थानीय राजनीति में,
और वो पेनेलोपी वाला मोड़।
हाँ, वो एक बड़ा मोड़ है। पेनेलोपी जो अपनी श्वेत पहचान में जी रही थी, उसे अचानक अपनी छिपी हुई अश्वेत विरासत का पता चलता है। ये एक भूचाल जैसा है उसकी जिंदगी में।
बाप रे।
और फिर ये सारे अलग अलग रास्ते, ये सारी जिंदगियां आखिरकार अम्मा के नाटक के प्रीमियर पर आकर एक बिंदु पर मिलती हैं।
अच्छा, वो क्लाइमैक्स है।
हाँ, वो क्लाइमैक्स सिर्फ नाटक का नहीं है, बल्कि इन 12 जिंदगियों के जो अनकहे अनजाने अंतर संबंध हैं, उनका भी है। पाठक को अचानक से बिजली के झटके की तरह एहसास होता है कि अरे, ये सब किरदार जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं,
हाँ,
वो कैसे एक बड़े सामूहिक इतिहास और अनुभव का हिस्सा है, कैसे उनकी जिंदगियां एक दूसरे से गुंथी हुई हैं।
ये संरचना ये वाकई पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना?
बिल्कुल,
भले ही हमें इसका रोजमर्रा में एहसास ना हो।
बिल्कुल।
अच्छा, अगर हम उपन्यास के मूल संदेशों या थीम्स पर ध्यान दें तो इंटरसेक्शनैलिटी और पहचान की बहुलता, ये तो शायद सबसे ऊपर है।
हाँ, बिल्कुल।
एवरेस्टो को एक बड़ा शक्तिशाली कथन है उपन्यास में, शायद आपने भी नोटिस किया होगा।
हाँ।
हम एक ही महिला की कई प्रतिकृतियां नहीं है, हम एक सजातीय समूह नहीं है, हम कभी नहीं थे।
जी हाँ, वी आर नॉट द सेम वुमन मल्टीप्लाइड।
क्या लाइन है।
यह स्टीरियोटाइप पर सीधी चोट है।
बिल्कुल।
और दूसरा अहम पहलू है पीढ़ियों के बीच का रिश्ता।
हाँ।
उसमें जुड़ाव भी है और टकराव भी।
हाँ, वो अम्मा और यास के रिश्ते में दिखता होगा।
हाँ, और दूसरों में भी। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कंधों पर खड़ी होती है, उनके बलिदानों से फायदा उठाती है, लेकिन साथ ही उनके विचारों को चुनौती भी देती है। जैसे अम्मा अपनी माँ ग्रेस की पीढ़ी से अलग है और याज अम्मा की पीढ़ी से। उपन्यास में एक जगह एक बुजुर्ग किरदार युवा पीढ़ी से कहता भी है, तुम नौजवानों के साथ दिक्कत ये है कि तुम्हें लगता है कि अन्याय और असमानता का आविष्कार तुमने किया है और हम बुजुर्ग बस नजारे देख रहे थे।
हाँ, ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। ये पंक्तियाँ पीढ़ियों के बीच की इस जटिल समझ और कभी कभी नासमझी को बड़ी खूबसूरती से दिखाती हैं।
बिल्कुल।
इसके साथ ही उपन्यास प्रणालीगत मुद्दों को भी उठाता है, मतलब समाज में गहरे बैठे नस्लवाद, लिंगवाद, वर्गवाद
जी,
और व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति, उसकी एजेंसी, उसके बीच के तनाव को भी बड़ी ईमानदारी से दिखाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। किरदार मुश्किलों का सामना करते हैं, उन्हें रास्ते में रुकावटें मिलती हैं, लेकिन वो सिर्फ हालात के शिकार बनकर नहीं रह जाते।
नहीं रहते।
उनमें लड़ने की, आगे बढ़ने की, अपनी जिंदगी को मायने देने की एक जबरदस्त इच्छा है। जैसा एक किरदार सोचता भी है, वो किसी की शिकार नहीं बनने वाली थी, वो एक उत्तरजीवी बनने वाली थी, एक उन्नति करने वाली, वो अपने जीवन को कुछ बनाने वाली थी।
She was not about to be anyone's victim.
ओ वाह। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि फलना फूलना है, एक तरह से थ्राइव करना।
एग्जैक्टली।
और इन सब के बीच प्यार, दोस्ती, परिवार और समुदाय के रिश्ते, वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये रिश्ते सहारा भी देते हैं और कभी कभी
बोझ भी बन जाते हैं।
हाँ, बोझ भी बन जाते हैं। उपन्यास रिश्तों की जटिलताओं को बिना किसी लाग लपेट के बहुत ईमानदारी से दिखाता है।
और प्रतिनिधित्व का सवाल, मतलब कला और मीडिया में।
हाँ, वो भी एक बड़ा थीम है। किसकी कहानी कौन सुना सकता है? क्या व्यावसायिक सफलता पाने के लिए कलात्मक ईमानदारी से समझौता करना पड़ता है? ये सवाल अम्मा और डोमिनिक जैसे किरदारों के जरिए बहुत खूबसूरती से सामने आते हैं।
गद्य का मिश्रण, ये सिर्फ भाषा को सुंदर नहीं बनाता बल्कि किरदारों की जो अंदरूनी दुनिया है ना
जी,
उसे पाठक तक पहुंचाने का एक जरिया बन जाता है। वाक्यों की लय, उनकी गति, शब्दों का चुनाव, ये सब मिलकर एक खास किस्म का भावनात्मक माहौल रचते हैं।
और एक और तकनीक जिसका आपने जिक्र किया था, मुक्त अप्रत्यक्ष कथन।
हाँ,
फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स।
हाँ हाँ,
फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है पर इसका असर कमाल का है। ये वो तरीका है जहां लेखिका हमें सीधे किरदार के दिमाग में ले जाती है।
अच्छा।
हाँ, उसकी सोच और भावनाओं को उसी की जुबान में सुनाती है, बिना उसने सोचा कि या उसने महसूस किया कि जैसे शब्दों के। जैसे जब हम कैरल की असुरक्षाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उसके मन की बात सुन रहे हैं, लेखिका बीच में है ही नहीं। वाह, इससे तो किरदारों से एक बहुत गहरा, बहुत निजी किस्म का जुड़ाव महसूस होता होगा।
होता है, बिल्कुल होता है।
और विराम चिन्हों का कम इस्तेमाल, खासकर डायलॉग में कोटेशन मार्क्स का न होना, उसका क्या असर होता है?
देखिए, ये एक और बोल्ड कदम है एवरेस्टो का। कोटेशन मार्क्स न होने से क्या होता है कि संवाद, किरदार के अपने विचार और कहानी का वर्णन, वो सब एक साथ बहते हुए लगते हैं।
कोई रुकावट नहीं।
हाँ, कोई साफ बंटवारा नहीं। इससे पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग जरूर होता है। शुरू में शायद थोड़ा ध्यान देना पड़े कि कौन बोल रहा है या सोच रहा है, पर ये पाठक को कहानी की दुनिया में पूरी तरह डुबो देता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक ही सांस में किरदारों की बाहरी और भीतरी दुनिया को महसूस कर रहे हैं। सीमाओं का यह धुंधलापन असल जिंदगी जैसा ही तो है ना?
सही कहा। हमारी सोच और हमारी बातें कहां इतनी साफ साफ बंटी होती हैं, और कहानी का सीधी रेखा में ना चलना, वो यादें, वो फ्लैशबैक।
हाँ, वो समयिक तरलता या टेम्पोरल फ्लूइडिटी, वो दिखाती है कि हमारा अतीत कैसे हमारे आज को लगातार शक्ल देता रहता है। हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, हमारा इतिहास, हमारी यादें, वो हमेशा हमारे साथ चलती हैं।
और उपन्यास में कुछ प्रतीक भी हैं जैसे थिएटर या भोजन।
हाँ बिल्कुल, थिएटर सांस्कृतिक पहचान और प्रतिनिधित्व का प्रतीक बन जाता है। भोजन पीढ़ियों की निरंतरता और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। कपड़े भी हैं जो बदलते वक्त के साथ बदलती पहचान का इशारा करते हैं।
तो इन सब साहित्यिक तकनीकों और इतनी गहरी मानवीय कहानियों का नतीजा क्या होता है, मतलब पाठक पर इसका क्या असर पड़ता है?
असर बहुत जबरदस्त होता है भावनात्मक स्तर पर। बहुत से पाठक, खासकर अश्वेत महिला पाठक, इन किरदारों में अपनी जिंदगी, अपने संघर्षों और अपनी खुशियों की कहीं ना कहीं कोई झलक देखते हैं। और उन अनुभवों को सामने लाना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या जिन पर बात नहीं होती, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये उपन्यास सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये सहानुभूति पैदा करता है, समझ बढ़ाता है।
और ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहता होगा, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपन्यास ब्रिटिश पहचान की हमारी समझ को भी चुनौती देता है और उसे विस्तार देता है। ये दिखाता है कि अश्वेत ब्रिटिश महिलाएं सिर्फ हाशिए पर नहीं हैं।
हाँ।
बल्कि वे ब्रिटेन के ताने बाने का, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिन्होंने उसे बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
और महिलाओं के आपसी रिश्तों का भी उत्सव मनाता ये उपन्यास, है ना? दोस्ती, माँ बेटी के रिश्ते, समुदाय।
हाँ हाँ, बिल्कुल, उन रिश्तों की जटिलताओं के साथ साथ उनकी ताकत का भी।
सच कहूँ तो मेरे लिए जो सबसे स्थायी छाप ये किताब छोड़ती है वो है अंतर संबंध का वो गहरा एहसास।
हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस।
ये जानना कि हमारी कहानियां, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं भी कैसे एक बड़े जाल का हिस्सा हैं, कैसे हम अनजाने में एक दूसरे के जीवन को छूते हैं और प्रभावित करते हैं, ये एहसास, ये बहुत उम्मीद जगाता है।
बिल्कुल, एक किरदार के अंदर का वो एहसास शायद हम सब पर लागू होता है। जब वो सोचती है, उसे एहसास होता है कि वो दशकों से अपनी सांस रोके हुए है, अपनी ही त्वचा में खुलकर सांस लेने की इजाजत का इंतजार कर रही है।
She realizes She's been holding her breath. कितनी मार्मिक बात है।
ये उपन्यास जैसे उन सभी को जिनकी आवाजें दबी हुई थीं, उन्हें खुलकर सांस लेने की इजाजत देता है।
तो संक्षेप में कहें, गर्ल वुमन अदर हमें याद दिलाता है कि पहचान कितनी परतदार होती है, कितनी मल्टीलेयर्ड होती है, और हर कहानी हर अनुभव कितना कीमती है। ये विविधता का जश्न मनाता है बिना किसी एक पहचान को दूसरों से ऊपर रखे,
और साथ ही ये दिखाता है कि इन सारी अलग अलग आवाजों के नीचे एक साझा मानवीय धागा है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। हमारी अपनी विशिष्टता और हमारी सामूहिकता, ये दोनों ही सच हैं एक साथ।
इस उपन्यास को पढ़ने के बाद शायद एक सवाल पाठक के मन में जरूर रह जाता है, अगर ये 12 आवाजें मिलकर ब्रिटिश अश्वेत अनुभव की इतनी समृद्ध, इतनी बहुरंगी तस्वीर बना सकती हैं, तो उन अनगिनत अनकही कहानियों में कितनी और विविधताएं और सच्चाइयां छिपी होंगी जिन्हें अभी भी सुना जाना बाकी है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।